ओम शांति। तो ये प्रश्न उत्तर सीरीज है जो कि अव्यक्त मुरलियों से संग्रहण किया गया है। प्रश्न है 7 जनवरी 1978, उस मुरली का प्रश्न है, माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनने की विधि क्या है? माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनने की विधि क्या है? तो बाबा के शब्दों में उत्तर है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात विजयी रतन। माया अंदर से बिल्कुल ही शक्तिहीन है, उसका बाहर का रूप देख घबराओ नहीं, उसको जिंदा समझ मूर्छित ना हो जाओ। माया मूर्छित हुई पड़ी है, लेकिन कभी कभी मूर्छित को देखकर भी मूर्छित हो जाते हैं। अब उसे खुशी खुशी विदाई दो। नॉलेजफुल की स्टेज पर रहो तो कभी धोखा नहीं खा सकते। नॉलेजफुल की स्टेज पर रहो तो कभी धोखा नहीं खा सकते। तो ये उत्तर है। प्रश्न ये था कि माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनने की विधि क्या है? तो ये बाबा ने बताया हम सबको कि ये सम्मान में स्थित रहो, और माया के बारे में बताया कि माया के अंदर कोई शक्ति नहीं है, मूर्छित हुई पड़ी है, उसको देख के घबराओ नहीं, और नॉलेजफुल की स्टेज पर रहो। तो माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनने की विधि, तो माया की कौन कौन सी चाल है, कौन कौन सी माया की चाल हो सकती है? पहली चाल है सुला देती है, तो तीन प्रकार की नींद से सुला देती है, एक तो स्थूल नींद से, दूसरा ज्ञान की नींद से, तीसरा विस्मृति की निद्रा से। माना ज्ञान है, अगर हमको स्मृति नहीं है तो विस्मृति की निद्रा में, और अज्ञान नींद में तो पहले सोए हुए थे, और तीसरी नींद जो स्थूल निद्रा है। तो पहला तो माया की चाल है कि नींद से वो हमको बेहोश कर देती है, और दूसरी चाल माया की ऐसी कितनी सारी चालें होंगी जो हमको फंसा लेती है। हाँ, भोजन करते समय बाबा की याद, आज बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं कि बच्चे भोजन पर याद रह के दिखाएं। बाबा को दिल होती है कि मैं भी भोजन अपने हाथ से पकाऊं और याद में रहूं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। कोई कोई बच्चे कहते हैं कि मैं सारा दिन याद में रहता हूं, लेकिन ऐसा है नहीं, अपने को मियां मिठू नहीं समझना है। तो बाबा कह रहे भोजन पर भी, भाई ने कहा, बाबा ने कहा भोजन पर भी बाबा की विस्मृति हो जाती है, तो भी एक माया की चाल है, और फिर भोजन में आसक्ति वो भी एक माया की चाल है। तो पहला तो हो गया नींद, दूसरा भोजन ये माया की चाल, तीसरी चाल संग दोष, संग के प्रभाव में माया लेके आ जाती है। सत्संग एक बाप ही है, आज की मुरली में भी है कि सत्संग एक बाप ही है, दुनिया वाले हैं जो वो महात्मा संग करते हैं। अगर पूछेंगे तो वहां क्या सुनाते हैं, वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन उससे सदगति नहीं होती। सदगति करने के लिए स्वयं भगवान को ही आना पड़ता है, सत्संग एक बाप ही करते हैं। तो तीसरी चाल है सत्संग, जो हमको उससे दूर ले जाती है माया, संग। चौथी चाल साइंस के साधन, साइंस के साधनों का दुरुपयोग, उपयोग तो करते हैं लेकिन अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं, लंबे समय तक उन साधनों में हम डूबे रहते हैं सदुपयोग करने के बजाय उनका समय समय पर अनुचित प्रयोग करते हैं, तो हमारा टाइम खा रहे हैं, वो हमारी एनर्जी खा रहे हैं, वेस्टेज कितना जा रहा है। तो चौथी चाल होगी साधन। तो पहली नींद, दूसरा भोजन, तीसरा संग, चौथा साधन, पांचवी चाल अलस्य अलवेलापन। हाँ, अलस्य अलवेलापन एक तो स्थूल से नींद से भी हो गया, और दूसरा कर लेंगे, टाल मटोल करते हैं, अलवेलापन है वो, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, किसने देखा, हो सकता ना ही करना पड़े, ये भी होता है। तो ये माया की पांचवी चाल कौन सा, अलस्य अलवेलापन हो गया, और हाँ अपनी सुविधा अनुसार हम श्रीमत को ढाल लेते हैं, बाबा की मुरलियों के कोटेशन के आधार पर हम उसी के अनुसार करते हैं, क्योंकि बाबा तो समय परिस्थितियां सामने सुनने वाले कौन से हैं, पात्र कौन से हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, उसके अनुसार मुरली चलाते हैं। तो हम श्रीमत को भी अपनी सुविधा अनुसार बना लेते हैं, वो भी माया की एक कुटिल चाल है। और तो ये छठी चाल होगी। और अगली चाल कौन सी हो सकती है, और कौन कौन सी चाल है जो हमको मूर्छित कर देती है? छह चालें बताई, कौन कौन सी? सबसे बिफोर टाइम जगा देती है, हाँ, तो वो भी बिफोर टाइम जगा देती है, अर्थात उठना था सवेरे मतलब 2-2:30 बजे और उठा देती है, बार बार बीच में हमारी नींद ही फिटाती रहती है, तो उसका प्रभाव जो सारे दिन की दिनचर्या है, कहीं भी कहीं ना कहीं हमारे मन में उस तरह के संकल्प हैं जो हमको प्रभावित कर रहे हैं, चाहे भोजन के हों या चाहे सारे दिन में कोई टकराव हुआ किसी प्रकार का, तो वो भी बिफोर टाइम हमको माया जगा देती है हमारे साथ। वह तो वास्तव में हमारी कमजोरियां माया तो है ही नहीं है। तो सबसे पहली बताई नींद, दूसरा भोजन, तीसरा संग, चौथा साधन, पांचवा आलस्य विलापन, छठा श्रीमत का उल्लंघन। और कौन सी चाल हो सकती है? इच्छाएं, अनावश्यक इच्छाएं। अच्छा बनने की इच्छा तो रखनी पड़ी, बिना इच्छाएं के जीवन तो है ही नहीं जैसे, लेकिन अनावश्यक इच्छाएं जो हमारे पुरुषार्थ में बाधक हैं, जिन इच्छाओं के कारण हमारा पुरुषार्थ कहीं ना कहीं उसकी गति धीमी पड़ रही है, तो अनावश्यक इच्छाएं। और क्या कह रहे आप? हाँ, अनेक प्रकार के संशय ले आते हैं कि बाबा तुमको अभी मदद कर ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे निश्चय में वो कमजोर, उसको नीम को कमजोर कर देती है, ये क्यों चल गए, पुराने हैं ये, ज्ञान में ऐसे चल रहे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, अनेक प्रकार के संशय के दीवारें माया हमको उनके अंदर ले आती है, खड़ा कर देती है हमारे सामने। और लक्ष्य की विस्मृति, कि हमारा ये ब्राह्मण जीवन है तो इसका क्या लक्ष्य है, वो हमें विस्मृत हो जाता है, तो भी एक माया की अनेक प्रकार की चाल है, चाल का जाल है ये जैसे, और उस जाल में हम फंस जाते हैं। और कौन कौन सी है? तो बाबा ने कहा माया की नॉलेजफुल होना भी नॉलेजफुल, अगर माया की नॉलेज नहीं है तो भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। क्या कह रहे थे? हाँ, वो तो हो गया साधन, तीसरे नंबर पर था ना मान शान। हाँ, सेवा करते हैं तो सेवाओं की जैसे हम कुछ उसका कुछ ना कुछ चाहते हैं, परिणाम के प्रणाम के अनुसार हमारी कोई खुशामद करे, जैसे आज बाबा ने बोला मियां मिठू नहीं बना, मियां मिठू अर्थात खुशामद, कोई हमारी खुशामद अपने आप ही करे या कोई दूसरा करे, तो सेवाओं के नाम मान शान के भी रहते हैं कि थोड़ा तो कोई बोल दे कि इसने अच्छी सेवा की, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। और अब ये हैं चाले, अनावश्यक रूप से संबंधों में। हाँ, जब भी हम संबंध संपर्क में आते हैं तो सामने वाला कुछ बोल देता है और वो हमको एकदम शेद दिल में शेद कर देता है, जैसे चाहे वो हमारे प्रति नहीं बोल रहा, किसी हमारा जो प्रियजन है जो हमारे संगी साथी उनके प्रति बोला, तो भी मन को हार्ड हो जाता है, कुछ ना कुछ भाई ये क्यों बोल रहे हैं, तो वो संबंधों में भी हमारी दरारें पैदा कर देते हैं। तो हम तो सब विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, किसी के प्रति हम सोच नहीं सकते, अगर संबंधों में दरारें हैं और हमारे मन में उनके प्रति संकल्प कुछ रहते हैं, तो भी हमारे पुरुषार्थ में जैसे डिस्टर्बेंस पैदा होती रहेगी, हमारे पुरुषार्थ की गति तीव्र नहीं हो पाएगी, तो ये भी माया की चाल है। अब इससे बचने के साधन कौन से हैं? सबसे पहले बताया नींद, अब ये जो 6-7, 7-8 बताया है, तो ये माया की चालें हैं, कुछ एक चालें हैं, तो इन सब चालों से बचने का भी क्या साधन है? अब पता तो है हमको ये माया की चालें हैं, उसके जाल हैं, अब उससे निकलने का तरीका क्या है? नींद, नींद को योग निद्रा में। हाँ, सही बोला। तो जिसमें हम सोते हैं, तो सोते समय अगर हम बाबा के संकल्प करते हैं, क्योंकि जिसमें हम अटेंशन रख के सोते हैं, तो वास्तव में नींद के समय ही संकल्प दूसरे भी आएंगे, तो हमको उस समय घबराना नहीं है, क्योंकि बीमारी हमको पता है कि जो हमने दवाई खाई, तो जिसमें हम दवाई खाते हैं हमको पता किस बीमारी की दवाई खा रहे हैं, तो वो संकल्प उसके भी रहते हैं हमको। तो इस तरह से नींद करते समय भी हमको कुछ अच्छे अच्छे संकल्प कि हम बाबा की गोद में सो रहे हैं, ईश्वरी गोद में सो रहे हैं, हम परमधाम में अभी जा रहे हैं, तो उस समय भी हमको कुछ ऐसे संकल्पों का संग्रहण पहले से कर लेना चाहिए, ताकि हमारी नींद जो एक सत्व प्रधान नींद हो जाए, जिसको जो नींद है वो योग निद्रा में परिवर्तन हो जाए, ताकि उठने के बाद हमको फ्रेश लगे, भारी भारी न लगे। तो इसका एक विशेष रूप से अटेंशन रखना है कि नींद भी हमारी यथार्थ एक्यूरेट और ताजी हो, एकदम फ्रेश हो जाए, उसके लिए हमको अच्छे संकल्पों का संग्रहण जो पहले से खुद को जमा करना पड़ेगा, ताकि नींद हमारी अच्छी हो जाए। तो दूसरा, एक पहली थी नींद, दूसरा भोजन। अब भोजन पर कौन से संकल्प, जैसे आज ही बाबा ने कहा कि बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं, तो भोजन के ऊपर माया बड़े रूप, बहुत प्रकार के रूप है माया की। पहले तो यह आसक्ति होगी भोजन के प्रति, चलो आसक्ति नहीं है, फिर भोजन के समय अगर हम मुख से नहीं बोल रहे तो लेकिन मन से क्या बोल रहे हैं, मन कहां कहां जा रहा है। बाबा ने कहा अगर बाप की याद में भोजन खाते हैं तो भोजन में जैसे ताकत भर जाती है, नहीं तो वो भोजन सारा माया खा जाती है और माया शक्तिशाली हो जाएगी, हम कमजोर हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। अर्थात मुरली में था एक बार के माया भोजन खा गई तो माया ताकतवर हो जाएगी, तो सर्वशक्तिवान तो माया हो जाएगी और हम खाली ऐसे रह जाएंगे। तो भोजन पर भी विशेष बड़ी कड़ी साधना है। बाबा ने कहा कि अपने को कोई बच्चा ऐसा ना समझे कि मैं संपूर्ण बन गया हूं आज की मुरली में है, तो मियां मिट्ठू जैसे अपने को समझते हैं। तो भोजन के ऊपर भी हमको ये विशेष अटेंशन रखने की जरूरत है। और तीसरा क्या था, संग। अब संग, अच्छे लोगों का संग। हाँ, तो संघ में भी अच्छे लोगों को कैसे पता चला, अभी हमारे सामने तो खराब है ही नहीं है कोई, सभी अच्छे हैं। बाबा ने कहा जो भी है संसार में सब अच्छा हो रहा है, कल्याणकारी हो रहा है, और अधिकतर जो माया है वो भी अच्छों से भी आती कहीं ना कहीं, वो अच्छे रूप से आती है। अर्थात हम उसी को कुछ ना कुछ अपने पुरुषार्थ का आधार बना लेते हैं। अच्छा चलो हम अच्छों का संग कर रहे हैं, तो अच्छे का संग करते हुए कहीं बुरे के प्रति, जो जिनको हम बुरा समझ रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में कुछ ऐसी नेगेटिव भावनाएं तो ना पैदा हो रही हैं, तो हमारे जो इस व्यवहार में फिर एक दो रास्ते तैयार हो जाते हैं। एक हमारे मन में होता है ये अच्छों का संग है, ये खराब का संग है, तो वहां भी एक दोनों के प्रति समभाव जैसे रहना चाहिए, तभी तो वो विश्व कल्याण करे कहलाएंगे। तो अच्छे का संग, उससे पहले हमें स्वयं का अपने साथ संग कैसे करना है ना। हमारा सबका दोहरा व्यक्तित्व होता है, एक तो है जो नॉर्मल रूप से है, एक है हमारा आंतरिक व्यक्तित्व। आंतरिक रूप से हमारे कौन कौन से ऐसे संकल्प हैं जो हम स्वयं के प्रति सोच रहे हैं। अगर हम स्वयं के प्रति हीन भावना सोच रहे हैं तो ये भी जैसे कुसंग हो गया कि मैं शक्तिहीन हूं, मैं तो ये कर नहीं सकता हूं, मेरे से होगा नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं, तो ये भी जैसे कुसंग है। ये कमजोर संकल्प अगर हमारी बुद्धि में है तो वो हम जैसे कुसंग में बैठे हुए, तो मुझे कोई साथ नहीं देता है, किसी के कंधे के सहारे की जरूरत है। बताया ना काली, पहले फोन करते थे कोई फोन ही नहीं करता है। तो ये जो है कुसंग जो सूक्ष्म रूप से, एक बाहरी है एक आंतरिक है, तो इस संग से भी हमको सूक्ष्म रूप से उसकी भी संभाल रखनी है कि हमारे सर्वसुंद एक बाप से हैं, और उसके लिए हमको टाइम देना पड़ेगा। अगर उससे उसके साथ हमारा संग हो, जैसे बताया था चिमन भाई ने पार्स मणि, पार्स का संग, तो पार्स का संग करने के लिए हमको हमारी मानसिकता भी वैसी रखनी चाहिए, मन के अंदर भी वैसी शुद्ध विचार होने चाहिए, जितना वो परम पवित्र है उतने पवित्र हमारी बुद्धि में विचार होने चाहिए, पवित्र विचारों का भंडारण होगा तभी हमारा उसके साथ कनेक्शन हो पाएगा। तो संग से, तो संग का हो गया पहला नींद, भोजन, संग, चौथा साधन। अब साधनों से क्या करेंगे, क्योंकि आजकल साधनों की डिजिटल माया अनेक प्रकार की है। अब यही साधन हमारे लिए जैसे वरदान बन जाए, बाबा ने कहा ये सब साधन तुम बच्चों के लिए बनाए गए हैं, अब इन साधनों का उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि उपयोग के नाम आज तो बिना कोई रह नहीं सकता है, युग ही ऐसा आ गया हुआ है, और उसमें सेवा भी समाई हुई है। अगर जैसे अगर किसी को गेम खेलने की आदत पड़ी है जो मोबाइल से, अब उसी को हम अलौकिकता में चेंज कर दें। बाबा ने कहा तुम बच्चे ज्ञान रत्न से खेलो, तो मुरली को अलग अलग तरीके से उसी से खेलते रहे, तो एक जो संसार के लिए अभिशाप का साधन बन गए हैं, वो अभिशाप का केंद्र बन गए हैं, लेकिन हमारे लिए वो वरदान साबित हो जाए, क्योंकि इन सब चीजों से हमको पूरा फायदा लेना है। तो साधनों को भी, साधन खराब चीज नहीं है, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे कर पा रहे हैं, चाहे कोई भी साधन, चाहे इंटरनेट है, कुछ भी है, हाँ उन साधनों का कितना हमको कहां उपयोग करना, ये नहीं कि 24 घंटे में उनके पीछे बढ़े रहे। तो साधनों का, और पांचवी बात कौन सी थी, आलस्य लवेलापन। आलस्य लवेलापन को कैसे परिवर्तन करेंगे, जैसे जो हम काम को टाल देते हैं, तो अगर हमको कोई चिड़चिड़ापन आता है, क्रोध आता है, तो उसको टाल देने का, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, आलस्य को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और कैसे करेंगे आलस्य लवेलापन को, हाँ ये भी याद रखना, दूसरे आगे बढ़ जाएंगे तो वो तो अच्छी बात है, बढ़ जाएंगे और समय, हाँ समय की स्मृति रहनी चाहिए। अगर समय कौन सा चल रहा है, केवल यही समय है जो सारे कल्प में हम अपना विशेष पार्ट नूंद रहे हैं। अगर इसमें का पंछी इसमें हमारे हाथ से उड़ गया तो दोबारा आएगा नहीं। एक एक सेकंड बाबा कहते कितना कीमती है, श्वासों श्वास तुम बच्चे मुझे याद करो। तो समय के प्रति भी हम सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे, चौकस रहेंगे, तो भी हमारा आलस्य लवेलपन समाप्त हो जाएगा। और आलस्य लवेलपन समाप्त करने के लिए और भी कुछ विधि अपनानी पड़ेगी। हाँ, जिस लक्ष्य में जाना उस हमारी स्पीड क्या है, और उसके लिए जो हमारा आलस्य लवेलपन आता क्यों, उसका कारण क्या है। कहीं ना कहीं हमको ज्ञान अच्छी तरह भी बैठा नहीं है, वो बाबा से हमारा प्यार वाड़ा नहीं है, रिगार्ड नहीं। काल की मुरली में था ना, बाबा से लव नहीं है उसका, रिगार्ड नहीं रखते। बोला बाबा ने कहा बैठ के दिखाओ निराकार की गोद में, अगर तुमको उसे बरसा लेना है तो बैठ के दिखाओ। तो ये चीजें समय की स्मृति, तो ये हम इन चीज से कौन से अलग से लवेलपन से मुक्त हो पाएंगे। और छठी बताई थी श्रीमत, श्रीमत में मन मत मिक्स कर देते तो उसके क्या करने का, अभी वो माया की चाल से बचने कैसे बचेंगे, क्या मिक्स करेंगे श्रीमत में। अभी पहले तो श्रीमत हमको ढूंढनी है मुरलियों से ही, ताकि वो हमें हमेशा याद रहे। कहां कहां हम उस श्रीमत को अपनी सुविधाजनक तैयार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, अर्थात हमारे में कहीं ना कहीं श्रीमत पर चलने की ताकत नहीं है, कमजोरी है। तो हमें स्वयं के ऊपर उसके ऊपर फोकस करना होगा, नजर दौड़ानी होगी कि श्रीमत पर हम मन मत मिक्स क्यों कर रहे हैं, नुकसान क्या उसे। अपने पांव पर कहीं कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे, अपने आप को तो नहीं ठग रहे हम। तो श्रीमत हमको, श्रीमत तो बहुत गहरी है, अनेक प्रकार की श्रीमत का उल्लंघन होता रहता है, तभी तो हमारा योग नहीं लगता है। जो हमारे जीवन में अगर बाबा का बनने के बाद भी हमारा योग नहीं लग रहा है, मन बुद्धि भटक रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके दोष हम खुद ही हैं, दूसरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने श्रीमत को यथार्थ तरीके से अप्लाई नहीं किया है, तभी तो हमारा मन बुद्धि भटक रहा है। अब हमको टीचर ने मेथड बता दिया, तो मेथड तो हम लगा रहे हैं, टीचर के अनुसार लगाएंगे तो मेथड निकल जाएगा, क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर हम अपनी मत मिक्स करते हैं, ये मेथड ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो कहां निकलेगा वो। तो बाबा ने जो भी हमको योग लगाने के तरीके बताए हैं, ज्ञान को समझने के तरीके बताए हैं, या ज्ञान सुनाने के तरीके बताए हैं, अगर हम उसको उसी अनुसार समझेंगे और उसी अनुसार करेंगे, तो वो श्रीमत हमारे लिए जैसे संजीवनी बूटी का काम करती रहेगी। नहीं तो वो श्रीमत हमको मन मत हम मिक्स करेंगे और मूर्छित कर देगी, और मूर्छित को देखकर हम और मूर्छित हो जाएंगे। बाबा ने कहा ना, कोई बच्चे मूर्छित को देखकर मूर्छित, अर्थात कोई बेहोश होता है तो कईयों का उसको देख के ही बेहोश हो जाते वो। तो हमको ये थी छठी बात श्रीमत। और सातवीं बात क्या बताई थी, नाम मान शान की इच्छाएं। अब हमको स्वयं भगवान ने इतना बड़ा नाम मान शान दे दिया है, रोज वो इतने बड़े सम्मान दे रहा है, टाइटल दे रहा है, अगर हम उसका दिया हुआ मान नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो फिर मनुष्य के मान से कैसे हम जीवित रह सकेंगे। स्वयं भगवान आके इतने इतने सम्मान दे रहा है, उसके ज्ञान का हर बिंदु जो इतना ऊंचा उठाते हैं हमको, हमारी जैसे उसने आंखें खोल दी हैं, हमें एक नया जीवन प्रदान किया है, हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया, कितना ऊंचा बिठा दिया उसने संसार के। जैसे हम अलग ही अल्लाह लोग, बाबा कहते हैं ना तुम बच्चे अल्लाह लोग हो भी। तो मान शान अगर हमको ये स्मृति नहीं, तो मान शान के पीछे हम भटकते रहेंगे और माया की ये चाल भी हमको फेल कर देगी, ना पास कर देगी। तो ये थी नाम मान शान। और कौन सा बताया था, हाँ जी, हाँ, परिस्थिति आने पर संशय। अनेक प्रकार की जीवन में परिस्थिति तो आनी है, अगर हम माया की चाल को नहीं समझ पाते हैं तो परिस्थिति आने पर हमारा निश्चय डगमगा जाएगा, फिर हम सोचेंगे भगवान के बच्चे बनने के बाद ही हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उस वश में शायद हम ये भूल जाते हैं कि अनेक जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब हमने तो बीज बोया हुआ, वो तुम्हारे सामने आएगा। अगर हम उस समय हमें स्मृति रहती है तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं, अगर स्मृति नहीं है तो उन परिस्थितियों में हमारा निश्चय डगमगाने लगता है। संशय बुद्धि बना देती है माया, और संशय बुद्धि विनिश्चयंती, अर्थात परमानेंट भले को विनिश्चिंत नहीं हुए, लेकिन उतना समय तो हमारा विनाश हो गया ना, उतना समय हमारी एनर्जी चली गई, टाइम चला गया, हमारी खुशी गायब हो गई, हमारे संबंधों में दरारें पड़ गई, उतना समय तो निश्चय बुद्धि हो गया, संशय बुद्धि हो गई ना, कितना नुकसान पड़ गया, घाटा पड़ गया। तो अनेक प्रकार की परिस्थितियों में भी आते हुए हम अपनी स्थिति को कैसे बनाए रखें, उसके लिए भी हमको खुद ही अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए ज्ञान योग धारणा सेवा साधना तपस्या, ये हम सबको बैलेंस रख के जीवन में चलना पड़ेगा। बताया था ना परसों स्थिति की कीमत है 1 करोड़ रुपया, और 1 लाख किसकी है, संबंधों की, और 1000 सेवा की, और उससे कम किसकी है, नहीं है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले स्थिति बनानी है अपनी। लेकिन स्थिति ऐसा नहीं कि सेवा छोड़ के स्थिति बनानी, वास्तव में सेवा भी स्थिति बनाने का माध्यम है। हम ये नहीं सोच रहे, अब तीन शब्द हैं तो हम काली सोच रहे कि ऐसा नहीं कि स्थिति हम सेवा छोड़ के स्थिति बनाने लगे, कभी बनेंगे नहीं। वो 1000 वाली स्थिति से ही हम 1 करोड़पति बन सकते हैं। वो अगर हम सोचेंगे सीधा करोड़ की तरफ दौड़े तो वो भी नहीं होगा, तो उसको भी समझने की जरूरत है। तो स्थिति श्रेष्ठ बनाने के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, उसको हम एक्यूरेट तरीके से करेंगे तो हमारी स्थिति स्वतः बढ़ती जाएगी। दुआएं मिलती हैं, बताया कल का स्लोगन था ना परसों का, बाप दादा के बाप दादा की दुआओं के विमान में बैठकर उड़ते रहो, स्वयं के और सर्व की दुआओं, माना अनेक प्रकार की दुआएं इकट्ठी करनी है तो हम विमान में उड़ते रहेंगे। तो स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सब चीजें चाहिए। और कौन सा बताया था, लक्ष्य। तो लक्ष्य हमारा सामने है कि हमको कहाँ जाना है, अब समय कितना रह गया है, उसको अचीव करने के लिए हमको किस गति से जाना पड़ेगा, उस पर पहुंचने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए हमको, कौन कौन सी बीच में परिस्थितियां आ सकती हैं, उनसे सेफ्टी करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो ये लक्ष्य अगर हमें स्मृति में रहता है तो भी हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति से हो जाएगा, तो भी माया की दाल गलेगी नहीं, तो माया खुद ही मूर्छित होकर खुद ही मर जाएगी। बाबा ने संडे की मुरली में कहा माया में कोई दम नहीं है, माया तो मरी पड़ी है, संडे की मुरली में था ना, माया में वो तो केवल अभी अंतिम समय चल रहा है, तुम वहां उसको जैसे विदाई दे रहे हो, तो माया तो है नहीं, वो तो हमारी कमजोरियां ही है। अगर असफलता आती है तो भी हम अगर डिसहार्टेड होते तो भी समझ लेते भी हमारी ये तो असफलता होगी, माया आ गई, तो माया उस समय भी असफलता से हमको घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, उसने हमको नया पाठ पढ़ाया, फिर आगे बढ़ो, वो तो बार बार गिराएगी। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों का गीत है कि जिन जिन राहों पर चलना है उन पर गिरना और संभलना है, तो अगर गिरेंगे नहीं चोट नहीं लेगी तो अनुभव कैसे बनेगी। हाँ, बाप का साथ ही छोड़ देते हैं। वो बाबा ने कहा मेरा क्या दोष है, मैंने क्या किया तुम्हारा तो मुझे छोड़ देते हो। बाबा का था ना ऐसे, अब भाई तुम्हारा बहन से बिगड़ी है या भाई से बिगड़ा है, मैंने क्या बिगाड़ा, तुम मुझे मेरी पढ़ाई छोड़ रहे हो। तो बाबा की शिक्षा कितनी रोचक तरीके से, कितना निरंकारी है वो। हाँ, सेंटर में सेवा दी तो बोलेंगे बाबा ने देखो सेवा दे दी, और फिर नहीं मिलेंगे तो बोले देखो बहन मुझे सेवा नहीं देती, अरे पहले भी बहन के तू ही तो दिया बाबा ने। इसलिए कल बाबा ने कहा ना ईश्वरीय गोद में बैठना है तो ब्रह्मा से संबंध नहीं रखते, तो निराकार की गोद में बैठ के दिखाओ। और इसलिए बाबा ने कहा परिवार में पास माना सब में पास, अगर परिवार में फेल तो बाबा भी पास कैसे करेगा, क्योंकि वहां बाबा के साथ थोड़ा नहीं रहेंगे, वो तो परिवार आएगा, हिसाब किताब तो परिवार के साथ बनेगा। तो ये चीज थी। तो प्रश्न था माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनने की विधि क्या है, तो उत्तर था एक तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहो। अब ये मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज कौन सी हो सकती है, इसमें फिर बहुत सारी बातें आ सकती हैं। समय पर ज्ञान गुण शक्तियां काम करें, समय पर माया आ रही है तो हमको उसकी भी नॉलेज हो कि माया है, समय पर जो कौन सी ज्ञान का बिंदु हमको कहाँ अप्लाई करना वो याद आना चाहिए तो माया है, या कौन सी कमजोरी हमें हमारे आगे पुरुषार्थ में बाधक बन रही है उसकी स्थिति भी स्मृति हमें रहे। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहो, अर्थात जो उसके संस्कार है, जो उसके अंदर शक्तियां हैं, वो शक्तियों की हमें अनुभूति होती रहे, उसकी छत्रछाया में, परमात्म शक्तियों की छत्रछाया में जैसे हम निरंतर चलते रहे, उसकी स्मृति बनी रहे। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात विजयी रत्न, माया अंदर से बिल्कुल ही शक्तिहीन है, उसमें दम नहीं है कोई भी, उसका बाहर का रूप रोल गोल्ड है, बाहर का रूप दे घबराओ नहीं, उसको जिंदा समझ मूर्छित ना हो जाओ, है ना, सांप मरा हुआ होगा तो उसके पास जाने से पहले सोचेंगे जिंदा तो नहीं है, हाथ नहीं लगाए होगा इसको भी, ऐसे माया भी ऐसे ही है, पेपर टाइगर है। लेकिन कई बार होता भी वो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, जैसे वो फिनेटिक पंछी कौन सा होता है, फिनिक्स, हाँ, तो वो ऐसे है, माया भी ऐसे होती है। माया की राख बाबा कितने समुद्र में डाल दो, अगर वो नहीं डाली तो फिर वो किसी न किसी रूप से मूर्छित सुरजीत हो जाएगी और बाहर कर देगी, तो उसका जिंदा समझ मूर्छित ना हो जाओ। माया मूर्छित हुई पड़ी है, लेकिन कभी कभी मूर्छित को देखकर भी मूर्छित हो जाती है। उसका हार्ट अटैक हो तो खुद दूसरे का भी हो जाएगा। अर्थात माना हम डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, कोई परिस्थितियां आ रही हैं तो हमारी स्टेज ऊपर नीचे हो जाएगी। अब उसे क्या करो, विदाई दो। कैसे दो विदाई? खुशी खुशी विदाई दे। किसको? माया को विदाई दो। नॉलेजफुल की स्टेज पर हो तो कभी धोखा नहीं खा सकते। देखो इंपॉर्टेंट लाइन, नॉलेजफुल की स्टेज पर हो तो कभी धोखा नहीं खा सकते। तो धोखा हम खाते हैं अर्थात हम नॉलेजफुल की स्टेज पर नहीं है। हर प्रकार की नॉलेज, चाहे तन की है या धन की है, मन की है, कोई भी है, हर प्रकार की नॉलेज अगर हमारी स्मृति में रहेगी तो हम धोखा नहीं खाएंगे। तो ये प्रश्न था 7, कब का प्रश्न था ये, क्या डेट बताई थी? हाँ 7 जनवरी 78। तो माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनने की विधि क्या है? और इसके हिसाब से हम फिर हम अपना इख्तियार कर सकते हैं। ये तो बाबा ने छोटा सा बताया, तो हमारे जीवन में कहाँ कहाँ माया आती है, किस रूप में आती है, उसको हम स्वयं ही जांच करेंगे। तो इसको ज्ञान को थोड़ा खींचना पड़ता है, नहीं तो उतना पढ़ के काम बनने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही बोला। ब्राह्मण जीवन में देखो जो भी है, अगर हम ब्राह्मण जन्म लेने के बाद उसी समय लिखना शुरू कर देते हैं और लंबे समय के बाद वो पुरानी डायरी हमारे हाथ में लगती तो एक नई जैसे करंट आ जाता है कि हमने पहले किया हुआ है, हमको याद ही नहीं रहेगा तो फिर बाद में वो विस्मृत हो जाएगा और उसका मजा भी नहीं आएगा। तो जिन परिस्थितियों में गुजरे हुए अगर हम पहले से उसका चिंतन किया हुआ लिखा हुआ है तो वो जो डायरी है ना एक हमारे लिए बहुत मार्गदर्शक बन जाती है। स्वयं कई प्रकार की परिस्थितियों से हमने खुद ही पार पाया हुआ है, लेकिन अगर हमने उनको भूल गए और अभी परिस्थितियां आ रही हैं तो हम उन परिस्थितियों का दूसरों से पूछ रहे हैं फिर, क्योंकि हमने वो पहले का लिखा ही नहीं, कुछ रखा ही नहीं अपने आप, अपने पास में मटेरियल रखा ही नहीं है, फिर दूसरों का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। तो पहले से लिखना चाहिए, लिखने की आदत बहुत अच्छी है, जिसको नहीं आता लिखना तो उसको भी सीख लेना चाहिए। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर सदा स्थित रहो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात विजयी रत्न। माया अंदर से बिल्कुल ही शक्तिहीन है। माया किस किस रूप में आती है, क्या क्या करती है, एक था ना माया मुरलियों में बाबा ने बहुत सारा बताया था। तो माया शतकम, माया के 100 प्रकार कितने हैं, अनेक प्रकार के। माया थप्पड़ लगाती है, नाक से पकड़ती है, कान से पकड़ती है, माया सुला देती है, कच्चा खा देती है, पका के नहीं खाती है, घूसा मारती है, माया मौसी है, माया बाबा की बेटी है, माया बिल्ली है, माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डालती है, आज ही डाला मुरली में, माया गला घोट देती है, कान काट लेती है, नाक काट देती है, हाथ काट देती है, चूहे की तरह फूक मार के खाती है। तो हम भी माया को चूहे की तरह खाए, उसको पता नहीं चले खा गया कौन हमको। माया बिल्ली पंजा मारती है, माया के चंबे में आ जाओ बच्चे। तो ये अनेक प्रकार के माया के रूप हैं, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि माया किस किस रूप से आती है। तो माना खुद चिंतन मनन करना अति आवश्यक है, तो ये हमारा बेड़ा पार हो पाएगा, नहीं तो फिर जितना खुशी रहनी चाहिए उतना नहीं होगी, फिर माया को खुशी खुशी विदाई नहीं दे पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं माया अंदर से बिल्कुल ही शक्तिहीन है, उसका बाहर का रूप देख घबराओ नहीं, उसको जिंदा समझ मूर्छित ना हो जाओ। माया मूर्छित हुई पड़ी है, लेकिन कभी कभी मूर्छित को देखकर भी मूर्छित हो जाते हैं, है नहीं उसके अंदर दम कोई नहीं है, लेकिन हमारा उससे संबंध इतना गहरा हो गया है कि उससे प्यार हो गया बहुत, तो उसको भी हम मरता हुआ देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने अनेक 63 जन्मों का नाता है उससे, रिश्ते बना के रखे हो, अब रिश्ता तोड़ना सहज काम थोड़ा नहीं है, क्योंकि उससे भी तो प्राप्ति हुई ना अनेक प्रकार की, ऐसा नहीं कि माया से प्राप्ति नहीं हुई, अनेक प्रकार की प्राप्तियां भी हुई है ना। किसी से बचना हो, अपने को रोना चिल्लाना कर दो तो सामने वाले बहुत प्रेम प्यार से हमारे पास व्यवहार करते हैं, तो अपनी कमजोरी होगी ना वो भी। तो कभी कभी मूर्छित को देखकर भी मूर्छित रहते हैं, अब उसे खुशी खुशी विदाई दो। नॉलेजफुल की स्टेज पर हो तो कभी धोखा नहीं खा सकते। तो ये माया के कुछ रूप थे, इसके अलावा माया के कौन से रूप हो सकते हैं? ये तो 8 प्रकार के रूप बताए, माया तो अनेक रूप है, कितने रूप है और अब इसको मारने के जो बताया कुछ एक विधि है, उसके अलावा सुदर्शन चक्र का हथियार, बाबा ने कहा ड्रिल करते रहो, सुदर्शन देह मन का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, बिजी रहो सेवा में, सबसे बड़ी बात। अगर हम स्थूल सूक्ष्म रूप से मन को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है तो स्थूल रूप से सेवाओं में बिजी रहते हैं तो भी माया जीत बनने का सह साधन है। और जो सेवाओं के माध्यम से दुआएं मिलती है वो हमारे पुरुषार्थ में बहुत तीव्र गति से हमारे पुरुषार्थ को आगे कर देगी। अगर हम एक दो को देखने के इसमें लगे रहे, पर चिंतन पर निंदा में दूसरा क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, तो हम खुद ही जैसे माया को पकड़ के अपना मित्र बना रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं। तो इससे मुक्त होने की जरूरत है। तो हम खुद ये लिस्ट निकाल सकते हैं कि माया के कितने रूप हैं, जो अपने अपने व्यक्तिगत रूप से सबके अपने अपने अलग अलग होंगे, किस प्रकार से माया अटैक करती है, क्या उससे मुक्ति होने का साधन है। ओम शांति।